हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा अमन के साथ उसके ऑफिस की ओर रवाना हुई थी। अमन ने तारा से कहा था, सबसे पहले तुम अंदर जाओगी, उसके बाद मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम नहीं जानती तुमने मेरी इज्जत बचाकर मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। अगर उस दिन वो काली शक्ति मुझ पर हावी हो जाती तो सफ़ेद जिन्नों का नाम तो खराब हो ही जाता, साथ ही साथ जिन महाराज की उपाधि भी किसी और को दे दी जाती और सभी लोग मेरी अपेक्षा करने लग जाते। तुम नहीं जानती तुमने मेरे ऊपर कितना उपकार किया है। ऐसा कहकर अमन ने तारा को गले से लगा लिया था और जल्दी ही वे दोनों अपने ऑफिस पहुंच चुके थे। अमन ने तारा को थोड़ी दूरी पर उतार दिया था। जब तक तारा ऑफिस के अंदर नहीं गई, तब तक अमन गाड़ी लेकर वहीं खड़ा रहा था। जैसे ही तारा ऑफिस के अंदर गई, अमन भी पीछे पीछे ऑफिस के अंदर चला गया था। ऑफिस में जाकर तारा ने देखा, मल्लिका और अमित अभी तक नहीं आए थे। तारा की नज़र सबसे पहले उन दोनों पर ही गई थी, लेकिन वे दोनों ही गायब थे। तारा सोचने लगी कि ज़रूर वे लोग कुछ ना कुछ अपना प्लान बना रहे होंगे। यही सोचकर तारा उनके आने का इंतज़ार करने लगी थी। जल्दी ही अमन ऑफिस में आ गया था और सीधा अपने केबिन में चला गया था। तारा ने गहरी सांस लेकर अमन को देखा था। अमन बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसके लिए वो ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रही थी। अभी तारा मल्लिका के केबिन की ओर देख ही रही थी कि तभी मल्लिका एक बहुत ही खूबसूरत सी रेड डार्क ड्रेस पहनकर आई। ड्रेस हाफ शॉर्ट थी, उसकी थाई तक आ रही थी और उसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऑफिस में सभी लड़कों के मुंह उसी ओर थे, सबके मुंह उसे देखकर खुले रह गए थे। मल्लिका कमाल की खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही तारा ने मल्लिका को देखा, वो भी उसे देखने लगी थी और उसी के कुछ देर बाद अमित भी पीछे पीछे आ गया था। तारा समझ चुकी थी कि ये दोनों एक साथ आई हैं और अलग अलग आने का दिखावा कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले तारा और अमन ने किया था। जैसे ही अमित की नज़र तारा पर पड़ी, वो उसे देखने लगा था। दिन पर दिन तारा के प्रति उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी। तारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मल्लिका का जिस्म तो बनावटी था, उसके अंदर जो काला साया था वो उसे खूबसूरत और जवान रखे हुए था, जबकि मल्लिका असल में 70 साल की बुजुर्ग औरत थी। अपने काले साये की वजह से वो एकदम जवान दिखती थी और बहुत ही खूबसूरत भी, लेकिन तारा तो एकदम प्योर थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और ऊपर से वो परी भी थी। अमित को दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़की को वो घूर कर देख रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक महाशक्तिशाली परी है जिसमें इतनी ताकत है कि वो अमित की काली शक्तियों को बर्बाद करने का हौसला रखती है। तारा ने मल्लिका को गहरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया था। तारा मल्लिका को केवल इसलिए देख रही थी क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि जिस तरह से अमन के जिस्म पर अनगिनत निशान थे, क्या मल्लिका के जिस्म पर भी निशान मौजूद थे। क्योंकि मल्लिका ने अपने आप को भी अमन से किस करवाया था, तो इसका मतलब साफ था कि उसके जिस्म पर भी निशान होने चाहिए। लेकिन उसके जिस्म पर एक भी निशान नहीं था, क्योंकि उसके अंदर जो काला साया मौजूद था वो उसके सारे निशान खत्म कर चुका था। तारा ने कुछ पल मल्लिका के जिस्म को देखा था क्योंकि उसने बहुत छोटी सी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। साफ साफ वो सामने ही दिखाई दे रही थी, तो वो पूरी तरह से साफ और क्लीन थी। वहीं अमन बार बार अपने साथ हुए उस इंसिडेंट को याद कर रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और तारा ने मल्लिका का नाम क्यों लिया था। अमन को लगने लगा था कि शायद मल्लिका ऑफिस में थी, तो इसी वजह से तारा ने गलती से मल्लिका का नाम ले लिया था। क्योंकि जिस पल अमन ने मुड़कर मल्लिका की ओर देखा था, मल्लिका ने अपना रूप बदल लिया था और तारा को भी इस बात का एहसास हो गया था कि वो गलत सोच रही है। उसने जिसे देखा था वो मल्लिका नहीं बल्कि कोई दूसरी औरत थी। अमित और मल्लिका जल्दी ही अपनी डेस्क पर काम करने लगे थे और अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी अमन शोर मचाता हुआ बाहर आ गया था। तारा हैरानी से अमन की ओर देखने लगी थी कि ऐसा क्या हो गया कि अमन इस तरह से बिहेव कर रहा है। अमन ने कहा था, सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो, अगले हफ्ते कंपनी का एक बहुत ही बड़ा दिन है। एक तो कंपनी की वर्षगांठ है और साथ ही साथ इस मौके पर विदेश से मेरे बहुत ही प्रिय मित्र विक्रांत रंधावा इंडिया आ रहे हैं। तो इसी खुशी में मैं एक बहुत ही शानदार पार्टी सभी के लिए अनाउंस करता हूँ और इस पार्टी की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी मैं अमित को सौंपता हूँ। जैसे ही अमित ने ये सुना वो चिढ़कर रह गया था। वो सोचने लगा था कि क्या मैं इन पार्टियों को अरेंज करने के लिए ही रह गया हूँ। जैसे ही तारा ने विक्रांत रंधावा का नाम सुना वो कुछ सोचने लगी थी और बोली, अचानक से ये विक्रांत रंधावा कहाँ से आ गया और अमन ने उसके बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया और उसे वो अपना दोस्त भी कह रहा था। तारा को काफी बेचैनी हुई थी और फाइल का बहाना लेकर वो जल्दी ही अमन के ऑफिस में चली गई थी। अमन ने जैसे ही तारा को देखा वो खुशी के मारे उसके गले लग गया था और बोला था, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती मैं आज कितना खुश हूँ। अमन की बात सुनकर तारा उसे हैरानी से देखने लगी थी और बोली थी, अभी तो आप इतने ज्यादा दुखी थे क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे आप भूल नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये क्या हो गया और ये विक्रांत रंधावा कौन है और आपने अचानक से उनके आने पर इतनी बड़ी पार्टी अनाउंस कर दी, वो भी नेक्स्ट वीक, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। तारा के बात सुनकर अमन ने उसके गले में अपने हाथ डाल दिए थे और बोला था, मेरी जान तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा और विक्रांत रंधावा मेरा बचपन का दोस्त है। तुम जानती हो जब मैं बहुत छोटा था और मेरे पास कुछ अलग ही शक्तियाँ थीं तो इस वजह से कोई भी कॉलेज में स्कूल में मेरा दोस्त नहीं बनता था और सब लोग मुझसे दूर दूर भागते थे। वो शायद इसलिए भी क्योंकि मेरा दिमाग शुरू से ही बहुत ही ज्यादा तेज था। सभी बच्चों से आगे मैं पढ़ाई में अव्वल था। बड़े बड़े क्लास के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं चुटकियों में दे दिया करता था तो इस वजह से कुछ लोग मुझ पर प्राउड फील करते थे तो कुछ लोग मुझसे डरने भी लगे थे क्योंकि मेरे पास आम बच्चों से ज्यादा ताकत थी। मैं किसी भी अपने से दुगनी उम्र के बच्चों को मार दिया करता था और बचपन में मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनता था, लेकिन विक्रांत हमेशा से ही मेरे साथ था। उसने हमेशा से ही मुझे सपोर्ट किया था। वो मेरा बचपन का दोस्त था। कुछ सालों तक हम साथ रहे थे लेकिन फिर वो अपनी आगे की स्टडीज करने के लिए और बिजनेस कोर्स करने के लिए अबॉर्ड चला गया था, लेकिन आज ही उसका मुझे ईमेल आया है। वो जल्दी भारत लौटने वाला है और उसने मुझसे कहा है कि वो मेरी कंपनी के साथ मिलकर कुछ काम करेगा क्योंकि वो कोई गया गुजरा आदमी नहीं है, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो इसीलिए वो अपनी कुछ डील्स मेरी कंपनी के साथ मिलकर करना चाहता है। तुम नहीं जानती तारा, तुम्हारे बाद अगर जिंदगी में किसी पर भरोसा कर सकता हूँ, यकीन कर सकता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ विक्रांत है। मैं बहुत मानता हूँ उसे, पर तुम यकीन नहीं करोगी, इतने सालों में मुझे वो याद भी नहीं था, बस कभी कभी याद आ जाया करता था लेकिन मैं मुस्कुराकर टाल दिया करता था। लेकिन आज अचानक से उसका ईमेल आया तो मैं हैरान रह गया और इसी खुशी में मैंने पार्टी अनाउंस कर दी। अमन की बात सुनकर तारा उसे देखने लगी थी।
बाकी अमन बहुत ही ज्यादा खुश था विक्रांत के आने की खबर से, इसलिए तारा को भी खुशी हो रही थी क्योंकि वो तो बस हर हाल में अमन को खुश देखना चाहती थी और अगर अमन खुश था तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं अमित मल्लिका के पास खड़ा हुआ था और गुस्से से तिलमिला रहा था और बोला था, इसने मुझे समझ क्या रखा है, ये दो कौड़ी का जिन, जब देखा हर बार ये सारे फालतू काम मुझसे ही करवाता है। अब इसने मुझे इतनी बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने का हुक्म दे दिया है और इसमें जरा सी भी गलती हो गई तो ये मेरी ही कान पकड़ेगा। मेरा दिल तो करता है इसका जाकर सर फोड़ दूं क्योंकि मुझे ये जिन महाराज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमित अपनी भड़ास मल्लिका के सामने निकाल रहा था लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था, मल्लिका अच्छी तरह से जानती थी कि अमन उसके पीछे ही कुछ बोल सकता है। अमन के सामने बोलने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं होती है। मन ही मन मल्लिका अमित का मजाक उड़ा रही थी। तभी मल्लिका ने अमित को शांत करते हुए कहा था, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी और ये भी तो सोचिए इस पार्टी में हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस पार्टी को अपने अकॉर्डिंग चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफी एक हफ्ता है और एक हफ्ते के अंदर अंदर हम तारा को अपने रास्ते से हटाकर क्या पता पार्टी की रात ही हम अमन को अपना बना लें और उससे वो तिलिस्मी पत्थर हासिल कर लें। आप ये भी तो सोचिए, सबके सब पार्टी में बिजी रहेंगे, किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाएगा कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। पार्टी का नाम सुनकर मल्लिका के अंदर अपनी ही खिचड़ी पकने लगी थी और उसने अमित के सामने जाकर कह भी दिया था। अमित भी मल्लिका की बात सुनकर सोचने लगा कि बाकी तुम ठीक कह रही हो, इस पार्टी को हम अपने अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। और इसे अपने लिए सक्सेसफुल बना सकते हैं। और रही बात रंधावा की, तो उसके स्वागत की किसे पड़ी है, जो उसका स्वागत करना चाहे करे मेरी बला से, अमित ने चिढ़ते हुए कहा था और फुफकारता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। मल्लिका उसे इस तरह से जाते हुए देखकर हंसने लगी थी।